पिछले सत्र में हमने देखा कि कैसे बुराई के ज्ञान ने सब कुछ बदल दिया। स्वर्ग छूट गया था। पुरुष और स्त्री को अपने कार्यों में कठिनाई और अपने विवाह में शिथिलता का अनुभव हुआ। उन्हें उनके घर से हटा दिया गया था और वे परमेश्वर से दूर थे। बुराई का ज्ञान फैल गया, परंतु परमेश्वर इसे हावी नहीं होने देंगे। सत्र 3 उद्धार। अपनी बाइबल में उत्पत्ति 6 खोले। आपको अपने जीवन प्रवाह के बारे में सिर्फ 2 धारणाओं को जानने की जरूरत है। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कौन है और कि आप कौन है। इसे सही तरीके से समझा तो आपके पास अपने जीवन के लिए एक दृढ़ नींव होगी। यदि इसे गलत समझा तो आप जल्द ही भटक जाएंगे। यह सत्य बाइबल आधारित विश्व दृष्टि की नींव है। यह विश्व दृष्टि मूल विश्वासों का एक समूह है जो कि ये निर्धारित करेगा कि हम सोचते कैसे हैं और हम रहते कैसे हैं। मनुष्य भिन्न प्रकार की जीवन शैली चुनते हैं क्योंकि वे खुद को अलग मूल विश्वासों पर संचालित करते हैं कि परमेश्वर कौन है और वे कौन है। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन एक संयोग है, यह कि आप अपने जीवन के मालिक हैं और यह कि अच्छे उपहार संयोग से आते हैं, तो आपका जीवन खुद की खोज और खुद के साथ सच्चे होने के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। परंतु यदि आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बनाया है और हर अच्छा उपहार परमेश्वर के हाथों से आता है, तो आपकी सबसे गहरी खुशी उसे जानने और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए होगी। और यदि आप मानते हैं कि जब आप मरेंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आपके लिए यह महसूस करना स्वाभाविक होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण संतुष्टि को खोजना है। परंतु जब आप ये विश्वास करना शुरू करेंगे कि इस दुनिया में अपने छोटे जीवन के बाद आप परमेश्वर से मिलेंगे जिसने आपको बनाया है, तो आपकी पहली प्राथमिकता उस दिन के लिए खुद को तैयार करने की हो जाएगी। ये दोनों पूर्ण रूप से अलग दुनियावी नजरिए हैं और वे दोनों सही नहीं हो सकते। ये दृढ़ विश्वास एक नाव पर एक पतवार की तरह है जो आपके जीवन में लेने वाली दिशा को नियंत्रित करेगी। आज जो दृढ़ विश्वास आपके दिल में उत्पन्न होगा वह तय करेगा कि आप कल कहां होंगे। आरंभ से ही मानव परिवार परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में बटा हुआ है। आदम और हव्वा की 2 संतान थी और दुनिया के पहले भाइयों ने अपनी अपनी नाव के पतवार को पूरी तरह से अलग दिशाओं में स्थापित किया। हाबिल ने परमेश्वर का अनुसरण किया, परंतु केन ने परमेश्वर का विरोध किया और उसका क्रोध उसके भाई पर गिरा। अंत में केन ने हाबिल को मार डाला और वो दुनिया का पहला कातिल बन गया। केन के कार्यों ने उसे परमेश्वर और उसके परिवार से अलग कर दिया, परंतु परमेश्वर ने उस पर बहुत दयालुता दिखाई। केन की उपलब्धियां शानदार रही। उसने एक शहर का निर्माण किया और उसकी संतानों ने संगीत, कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु परमेश्वर के बिना उसके जीवन में निरंतर बेचैनी बनी रही। हाबिल के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक और पुत्र दिया। उसका नाम शेत था और बाइबल की कहानी का केंद्र उसके ही वंशज पर है।
बाइबल की पूरी यात्रा के दौरान हम ये पाएंगे कि विश्वास के द्वारा और मसीह में परमेश्वर अपने अनुग्रह के माध्यम से हमेशा मनुष्य को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह तरीका नूह की कहानी में शुरुआत से ही स्थापित किया गया है। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर ने नूह पर दया दिखाई, पहली दफा उसे चेतावनी देकर कि प्रलय आ रही है, और दूसरी दफा उसे ये बताकर कि उसे इससे बचने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। अपने लिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। प्रलय की चेतावनियां बाइबल में दंड देने वाले परमेश्वर के क्रोध का विस्फोट नहीं है, वह एक प्यारे परमेश्वर की दयालु पुकार है जो कह रहा है, मुझे बुराई को नष्ट करना चाहिए और मैं करूंगा, परंतु मैं तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहता और यहां तुम इस प्रकार से बच सकते हो।
परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह अभूतपूर्व बाढ़ के लिए तैयारी करे। उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी कुछ ऐसे चीजों की तैयारी करने के लिए कहते हैं जो पहले कभी नहीं हुई। यीशु मसीह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। विश्वास परमेश्वर के वचन पे भरोसा करता है और खुद के कार्यों में दिखता है। नूह के विश्वास का सबूत यह था कि उसने वह नाव बनाई। उसने विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे कहा और उसने उस पर काम किया। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। सच्ची आस्था आज्ञाकारिता के फल से फूटने वाला जीवित वृक्ष है। यीशु ने तुलना करने के लिए नूह की कहानी का उपयोग किया। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। खाना पीना और शादी करना परमेश्वर द्वारा अच्छे उपहार है, परंतु यदि हम इन चीजों का आनंद लेते हैं और आने वाले प्रलय पर कोई विचार नहीं करते हैं तो हमारा आनंद बहुत कम समय के लिए होगा। नूह की श्रेष्ठ प्राथमिकता उस दिन के लिए तैयार रहने की थी जो परमेश्वर ने उसे बताई थी, और तैयार होने का एकमात्र तरीका यह है कि विश्वास करे जो परमेश्वर ने कहा और जो उसने आज्ञा दी उसका पालन करे। परमेश्वर ने नूह को जहाज के भीतर बारिश शुरू होने के पूरे 7 दिन पहले जाने को कहा। जहाज में सामान लादना जब बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी विश्वास का एक अधिनियम था। परमेश्वर के वचन के अलावा वहां जाने का कोई स्पर्श कारण नहीं था, बल्कि नूह ने मूर्खता महसूस की होगी। परंतु फिर बरसात आई और इसके साथ पानी के झरने पृथ्वी के ऊपर आए। रेगिस्तान में बनाया गया जहाज ऊपर उठ गया और नूह और उसके परिवार को उठा लिया गया और एक नई दुनिया में ले जाया गया। बार वो प्रलय थी जो कभी दोहराई नहीं जाएगी, परंतु परमेश्वर ने हमें एक और आने वाली भयानक प्रलय के बारे में चेतावनी दी है। जिस तरह परमेश्वर ने नूह के लिए जहाज प्रदान किया, उसने हमें यीशु मसीह के माध्यम से अंतिम प्रलय से बचने का एक रास्ता प्रदान किया है। जहाज के अंदर मौजूद सभी सुरक्षित थे।
जहाज के बाहर मौजूद सभी को नष्ट कर दिया गया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक जहाज प्रदान किया है, यीशु मसीह वो जहाज है। परमेश्वर ने नूह के उपदेश के माध्यम से बात की, लोगों को उसके दिन के बारे में बताया कि एक जहाज था जिसमें वे आ सकते थे और बच सकते थे। उसी प्रकार परमेश्वर हमें मसीह की ओर इशारा करते हैं और हमें बताते हैं कि यदि हम उनके पास आएंगे तो हम बच सकते हैं। प्रेरित पौलुस ईसाइयों का वर्णन मसीह में के रूप में करते हैं। जिस प्रकार नूह जहाज में था, उसी प्रकार से आप भी मसीह में हो सकते हैं। जब न्याय का दिन आएगा तो जो कोई भी मसीह में है, उन्हें परमेश्वर की प्रलय के माध्यम से सुरक्षित रूप से एक नई महिमा से भरी दुनिया में ले जाया जाएगा। यह जहाज उन सभी के लिए खुला है जो उसमें आना चाहते हैं। यीशु ने कहा, जो कोई भी मेरे पास आता है, मैं उसे कभी बहिष्कृत नहीं करूंगा। नूह के समय के लोगों के पास अफसर का एक खुला दरवाजा था, एक जहाज बनाया गया था और पूरे समुदाय को बचाया जा सकता था। परंतु नूह के परिवार के अलावा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने उनकी चेतावनी पर विश्वास किया। कुछ साल पहले एक पादरी लंदन में अपने अध्ययन कक्ष में बैठे आने वाले रविवार के लिए प्रवचन लिख रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, एक असली लंदन की मूसलाधार बारिश। एक बुजुर्ग दंपति सड़क पर चल रहे थे। जाहिर रूप से बारिश ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि उनमें से किसी के पास ना ही बरसाती या छाता था। वे एक पेड़ के नीचे खड़े थे जो पादरी जी की संपत्ति के किनारे पर था। यह सर्दी का समय था और पेड़ बिल्कुल खाली था, इसलिए उन्हें वृक्ष से किसी भी प्रकार की कोई शरण नहीं मिली। पादरी ने एक कोट उठाया और उनके पास जाने के लिए निकल गए। आप लोग यहां बिल्कुल भीग जाएंगे, उन्होंने कहा, आप लोग मेरे घर में क्यों नहीं आ जाते? उन्होंने पादरी को देखा और सच्ची विनम्र अंग्रेजी में कहा, नहीं, आपका बहुत धन्यवाद, हम यहां काफी ठीक है। परंतु आप पूरी तरह भीगे जा रहे हैं, पादरी ने कहा, आप अंदर आ सकते हैं और खुद को सुखा सकते हैं। परंतु पादरी ऐसा कुछ ना कह पाए जिससे कि उन्हें मना सकते, और इस बीच में वे खुद भीगे जा रहे थे। पादरी ने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और उनसे कहा कि अगर वे अंदर आना चाहते हैं तो उनका बहुत स्वागत है, परंतु वे बाहर ही रहे। पादरी कहते हैं कि वे आज तक नहीं जान पाए कि उन्हें किस चीज का डर था। वो अकस्मात आंधी तूफान परमेश्वर के न्याय की एक अच्छी तस्वीर है। यदि आप बाहर खड़े होंगे तो बारिश सीधे आप पर गिरेगी और आप इससे व्याकुल हो जाएंगे, परंतु यदि आप घर में हैं तो बरसात छत पर गिरेगी और क्योंकि आप अंदर हैं, ये आपको नहीं छुएगी। यीशु मसीह वो घर है जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रदान किया है, वो जहाज जो आपको आश्रय देता है परमेश्वर के प्रलय के तूफान से। जब यीशु क्रूस पर मर गए, पाप के लिए परमेश्वर की प्रलय उन पर गिर गई और परमेश्वर हमें हमारे आश्रय के लिए उनके पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप मसीह में हैं तो परमेश्वर का दंड आप पर नहीं गिरेगा, क्योंकि ये पहले से ही उन पर गिर चुका है। सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यहां एक सवाल है, क्या आप मसीह में हैं? क्या आपने उन पर अपना भरोसा अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में रखा है? जब आपके अंदर आने के लिए दरवाजा खुला है तो आप बाहर क्यों खड़े होंगे?
आइए हम देखें कि आज हमारे लिए क्या प्रकाशित हुआ। मसीह में अनुग्रह, विश्वास और उद्धार नए विचार नहीं है जो नए नियम में प्रकट हुए हैं। बाइबल एक सत्य कहानी है। परमेश्वर दयालु है, वो हमेशा से दयालु रहे हैं और हमेशा दयालु रहेंगे। जहाज हमें ये समझाने में मदद करता है कि मसीह में होने का क्या अर्थ है। जिस प्रकार नू और उसके परिवार को परमेश्वर के न्याय से सुरक्षित रूप में लाया गया था क्योंकि वे जहाज में थे, उसी प्रकार यदि हम मसीह में रहे तो हमें भी परमेश्वर की अंतिम प्रलय से सुरक्षित रूप से लाया जाएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आप सृष्टिकर्ता है और आपका मेरे जीवन पर पूर्ण अधिकार है। मैं मानता हूं कि मुझे बुराई का ज्ञान है और मुझे स्वर्ग से बाहर निकाला गया है। मैं आपके वचन जो आने वाले न्याय के बारे में है उस पर विश्वास करता हूं और मैं मानता हूं कि आपके अलावा मेरे पास और कोई अन्य आशा नहीं है। आपका धन्यवाद कि अपनी कृपा के द्वारा आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। मैं आज उन पर विश्वास करता हूं। मैं उन पर पूरा भरोसा रखता हूं। मैं उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में पुकारता हूं। अपनी आत्मा के द्वारा मुझे उनमें रखे और यीशु मसीह के माध्यम से मुझे बचाए। आमीन।